अध्याय सात, वैदिक संस्कृति सात, भूगोल एवं सामाजिक जीवन क, भूगोल। वेदों में भूगोल संबंधी सामग्री अत्यल्प है, अतः इस विषय पर कुछ अधिक लिखना संभव नहीं है। जो स्फुट संदर्भ मिलते हैं उनके आधार पर कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं, उनका ही यहाँ संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। एक, राष्ट्र और देश। वेदों में राष्ट्र और देश की स्पष्ट कल्पना है। राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र संचालन, राष्ट्रीय भावना आदि का अनेक मंत्रों में उल्लेख है। यजुर्वेद में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सदा जागरूक रहने का निर्देश है। अथर्ववेद में राष्ट्रार्णी के द्वारा अनेक राष्ट्रों का संकेत है। अथर्ववेद में देश शब्द का भी प्रयोग है और देश पर आने वाले संकटों के निवारण की प्रार्थना की गई है। दो, विविध भूखंड या द्वीप। अथर्वेद में भूमि के 3, 6 और 9 भागों का उल्लेख है। किसी भाष्यकार ने इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। वर्तमान भौगोलिक दृष्टि से इनकी अनुमानिक व्याख्या की जा सकती है। अथर्वेद का कथन है कि त्रिश्र पृथ्वी अर्थात पृथ्वी के 3 खंड हैं। पृथ्वी के 3 भूखंड ये माने जा सकते हैं, 1 यूरेशिया, 2 अफ्रीका, 3 अमेरिका। अथर्वेद का अन्यत्र कथन है, षड् उर्व्यः अर्थात पृथ्वी के 6 खंड हैं। इन भूखंडों को महाद्वीप मानने पर ये 6 भूखंड माने जा सकते हैं, 1 उत्तरी अमेरिका, 2 दक्षिणी अमेरिका, 3 अफ्रीका, 4 यूरोप, 5 एशिया, 6 ऑस्ट्रेलिया। अथर्वेद का यह कथन विशेष महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के 6 खंड हैं और उनमें से एक अधिक बड़ा है। पूर्वोक्त 6 भूखंडों में यूरोप और एशिया का मिला हुआ भूखंड यूरेशिया वस्तुतः बड़ा है। भारतीय परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर 7 बड़े द्वीप हैं। अतएव पतंजलि ने महाभाष्य में सप्त द्वीपा वसुमति अर्थात पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं यह लिखा है। अग्निपुराण में इस 7 द्वीपों के ये नाम दिए हैं, 1 जम्बू द्वीप, 2 प्लक्ष, 3 महाशालमली, 4 कुश, 5 क्रौंच, 6 शाक, 7 पुष्कर द्वीप। भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक अंश माना जाता है। 3 पर्वत। अथर्वेद में गिरयः पर्वता हिमवन्तः से हिमाच्छादित अनेक पर्वतों का ज्ञान होता है। 1 हिमवत। अथर्वेद के 10 मंत्रों में हिमवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें हिमालय की पर्वत श्रेणियों का उल्लेख है। कुष्ठ औषधि हिमालय पर होती थी। प्रार्थना की गई है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल सुखद हो। 2 त्रिककूद। यह पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता था। इस पर्वत पर अंजन होता था। यह सुलेमान पर्वत ज्ञात होता है, जहां आज भी सुरमा होता है। कीथ ने इसे वर्तमान त्रिकोट माना है। 3 मूजवत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, तैत्री संहिता आदि में मूजवत पर्वत का उल्लेख मिलता है। यह हिंदू कुश पर्वत की एक शाखा है, जो भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में है। इस पर्वत पर सोमलता होती थी, अतः सोमलता को मौजवत कहा गया है। 4 महामेरु। तैत्तिरीय आरण्यक में महामेरु का स्पष्ट उल्लेख है। इसके लिए कहा गया है कि कश्यप नामक सूर्य इसे कभी नहीं छोड़ता। यह उत्तरी ध्रुव की पर्वतमाला के लिए है। 5 क्रौंच आदि पर्वत। तैत्तिरीय आरण्यक में क्रौंच, मैनाक और सुदर्शन पर्वतों के नाम मिलते हैं। 6 दक्षिण पर्वत। विंध्य पर्वत का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में उत्तर पर्वत और दक्षिण पर्वत का उल्लेख है। दक्षिण पर्वत से विंध्य पर्वत का ही उल्लेख ज्ञात होता है। 4 समुद्र। ऋग्वेद और अथर्वेद में 2, 3 और 4 समुद्र का उल्लेख है। 2 समुद्र। ऋग्वेद और अथर्वेद के मंत्रों में 2 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, उभी समुद्र आदि से पूर्व और पश्चिम समुद्रों का उल्लेख है। पूर्व समुद्र से बंगाल की खाड़ी और पश्चिम समुद्र से अरब सागर ज्ञात होता है। 3 समुद्र। अथर्वेद के एक मंत्र में 3 समुद्रों का उल्लेख मिलता है। उपर्युक्त 2 समुद्रों के अतिरिक्त तीसरा समुद्र उत्तर की ओर था। यह समुद्र विशाल भूमध्य सागर के अवशेष काला सागर, कैस्पियन सी और अराल सागर के रूप में आज भी विद्यमान है। 4 समुद्र। ऋग्वेद और अथर्वेद में 4 समुद्रों को धन का भंडार कहा गया है। चतुः समुद्रम और समुद्रान चतुरः से 4 समुद्रों का स्पष्ट उल्लेख है। चतुर्थ समुद्र हिंद महासागर लेना उचित प्रतीत होता है। समुद्री धन मुक्ता आदि ऋग्वेद और अथर्वेद में समुद्र से प्राप्त मोती और शंख आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। समुद्री व्यापार। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख है कि समुद्री व्यापार होता था, 100 डांडों वाले विशाल पोत होते थे, ऐसे पोत कभी कभी टूट भी जाते थे और भुज्जियू जैसे व्यापारी को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था भी की जाती थी। 5 नदियां। ऋग्वेद और अथर्वेद में अनेक नदियों का उल्लेख है, प्रमुख नदियों का विवरण दिया जा रहा है। सप्त सिंधवा, ऋग्वेद और अथर्वेद में सप्त सिंधवा अर्थात 7 नदियों का कई बार उल्लेख है। एक मंत्र में कहा गया है कि ये 7 नदियां हिमालय से निकलती हैं और सिंधु में मिलती हैं। इन्हें सिंधु की पत्नी और सिंधु को इनकी रानी भी कहा गया है। इन 7 नदियों में पंजाब की 5 नदियां शुतुद्री, विपाशा, इरावती, चंद्रभागा और वितस्ता ली जाती है। इनके अतिरिक्त 2 नदियां सिंधु और सरस्वती ली जाती हैं। ये 7 मिलकर सप्त सिंधु होती है। सरस्वती नदी। ऋग्वेद में उल्लेख है कि सरस्वती नदी पर्वत से निकलती है और समुद्र में मिलती है। अथर्वेद में उल्लेख है कि देवों में सरस्वती नदी के किनारे सर्वप्रथम जौ की खेती की, वहां की भूमि अत्यंत उर्वरा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बड़ा महत्व है, इसे सर्वोत्तम देवी, सर्वोत्तम नदी और सर्वोत्तम माता के तुल्य पूज्य बताया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार सरस्वती प्लक्ष प्रास्त्रवण नामक स्थान से उत्पन्न हुई और विनशन नामक स्थान पर लुप्त हुई है। विनशन कुरुक्षेत्र में वर्तमान सिरसा नामक स्थान है। डॉक्टर सूर्यकांत ने लिखा है कि यह थानेश्वर के पश्चिम में बहने वाली और भटनेर में रेगिस्तान में विलीन हो जाने वाली सरस्वती नदी हो सकती है, जिसमें पटियाला के समय घग्घर नदी आ मिलती है। वहां से सिंधु तक एक सूखी नदी का मार्ग या घग्घर नदी का निशान अब भी विद्यमान है। कुछ विद्वानों का मत है कि घग्घर नदी ही सरस्वती नदी कही जाती थी। प्रोफेसर मैक्स मूलर का मत है कि सरस्वती सतलज जैसी विशाल नदी थी और वह समुद्र तक पहुंचती थी। गंगा आदि नदियां ऋग्वेद का 10-75 सूक्त नदी सूक्त कहा जाता है। इसके एक साथ अनेक नदियों का उल्लेख है। मंत्र है, इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री स्तोमं सचता परुष्णया असिक्न्या मरुद्वृद्धे वितस्त्यार्जिकिये शृण्हुया सुषोमया। इसमें नदियों का उल्लेख है, गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, असिक्नी, मरुद्वृधा, मरुवर्धमान, चेनावकी, वितस्ता, आर्जिकिया, सुषोमा। सिंधु की सहायक नदियां। नदी सूक्त के ही अगले मंत्र में सिंधु की पश्चिम सहायक नदियों का उल्लेख है। तृष्णा मया प्रथमम यातवे सजुह सुसरस्त्वा रसया श्रेत्या त्यात्वं सिंधो कुभया गोमतीं क्रूमं मेहत्वा सरथं याभिरीयसे। इस मंत्र में सिंधु नदी की पश्चिमी सहायक इन नदियों का उल्लेख है, तिष्ठा मा सुसर्तु रसा श्वेति कुभा गोमती क्रूमु। अन्य नदियां, उपर्युक्त नदियों के अतिरिक्त इन नदियों का भी उल्लेख मिलता है। 1 सुवास्तु, यह अफगानिस्तान की स्वात नदी है। 2 सरयू, यह कुभा की एक सहायक नदी है, अवस्था में इसे हरियू कहते हैं, यह वर्तमान हरिरुद्र नदी है। 3 विपाशा, यह पंजाब की ब्यास नदी है। 4 आपया, यह सरस्वती की एक सहायक बरसाती नदी है जो कुरुक्षेत्र के पास बहती है। 5 दृष्टवती, सरस्वती की एक सहायक नदी है। सरस्वती और आपया के साथ इसका उल्लेख है, घग्घर या चितंग नदी हो सकती है। 6 सदा नीरा, सतपथ ब्राह्मण में इसे कौशल और विदेह राज्यों के बीच की सीमा कहा गया है, या गंडक नदी मानी जाती है। 7 अंशुमति, अथर्वेद के 3 मंत्रों में अंशुमति नदी का उल्लेख है। इसके किनारे पर सोम होता था। इस नदी के किनारे इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से असुरों को हराया था। 8 90 और 99 नदियां, अथर्वेद और ऋग्वेद में 90 और 99 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि ये सप्त सिंधु से मिलने वाली छोटी पहाड़ी नदियां हैं। अथर्वेद और ऋग्वेद में इनको नाव्याह अर्थात नौका चलाने योग्य कहा है। 6 जनपद एवं स्थान नाम, वैदिक साहित्य में कतिपय जनपदों और स्थानों के नाम प्राप्त होते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 1 गांधारी, अथर्वेद में गांधारी, मूजवत, अंग और मगध, इन स्थानों का एक साथ उल्लेख मिलता है। इन स्थानों पर ज्वर के भेदों को भेजने का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्वेद में गांधार देश का प्राचीन नाम गंधारी मिलता है। ऋग्वेद में गंधार देश की ऊन वाली भेड़ों का उल्लेख है। वर्तमान कंधार नाम गंधारी का ही विकृत रूप है। प्राचीन समय में तक्षशिला से काबुल तक का प्रदेश गांधार कहलाता था। गांधार प्रदेश में रावलपिंडी और पेशावर जिले हैं। दो मुंजवत यह वर्तमान मुंजान इलाका है जो वंशु नदी के दक्षिण में गलचा भाषा भाषी क्षेत्र है। मुंजवत यह हिंदू कुश की एक शाखा का नाम है जो भारत के उत्तर पश्चिम में है। इस पर्वत पर सोमलता होती थी अतः सोम को मौजवत कहा गया है। तीन अंग गोपद ब्राह्मण में अंग मगधेशु समस्त पद मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि ये दोनों स्थान समीपस्थ हैं। बिहार में गंगा का दक्षिण पूर्वी मैदान भाग अंग देश था जिसमें आजकल मुंगेर और भागलपुर जिले सम्मिलित हैं। इसकी प्राचीन राजधानी चंपा थी। चार मगध यह बिहार में गंगा का दक्षिण पश्चिम भाग माना जाता है जिसमें पटना और गया जिले हैं। यजुर्वेद में मागध की अतिकृष्ट का काम दिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि मागध का संबंध चारण या भाट के काम से रहा है। पांच महावृक्ष अथर्वेद के तीन मंत्रों में महावृक्ष का उल्लेख है। इन मंत्रों में निर्देश है कि ज्वर के मूल स्थान मुंजवत और महावृक्ष देश है। मुंजवत के साथ ही महावृक्षों का उल्लेख करने से ज्ञात होता है कि महावृक्ष प्रदेश मुंजवत के समीप ही था। वह मुंजवत पर्वत के समीप का तराई वाला स्थान ज्ञात होता है। छह बल्लिक अथर्वेद के तीन मंत्रों में बल्लिक नाम का उल्लेख है। मुंजवत के साथ ही बल्लिक के उल्लेख से ज्ञात होता है कि यह मुंजवत के समीप का प्रदेश है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि कंबोज के पश्चिम वक्षु नदी के दक्षिण की ओर हिंदू कुश के उत्तर पश्चिम का प्रदेश वाल्लिक महाजनपद था। यह वक्षु नदी के किनारे वर्तमान बलक का प्रदेश माना जाता है। बल्लिक को बाल्लिक और वाल्लिक भी कहते हैं। सात कुरु पांचाल ऐतरेय ब्राह्मण में मध्य प्रदेश में कुरु पांचाल के राज्य का उल्लेख है। वहां राज्य नामक शासन प्रणाली प्रचलित थी। कुरु पांचालों की याग पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस देश के राजा राजसूय यज्ञ करते थे। कुरु पांचाल समीपस्थ प्रदेश रहे हैं और परस्पर मित्र रहे हैं। कुरुओं की राजधानी आसंधिवंत थी। कुरुक्षेत्र वाला प्रदेश कुरु राजाओं का था। पांचालों की राजधानी मध्य प्रदेश में कांपिल थी। ऐतरेय शतपथ आदि में वर्णन है कि आसंधिवंत में ही परीक्षित और जन्मेजय ने अश्वमेघ यज्ञ किया था और वहां इनका अभिषेक हुआ था। आठ उत्तर कुरु उत्तर भद्र ऐतरेय ब्राह्मण में हिमालय के ऊपरी भाग में उत्तर कुरु और उत्तर मद्र जनपदों का उल्लेख है। वहां वैराज्य शासन प्रणाली प्रचलित थी। संभवतः कुरु और मद्रों की एक शाखा इस भाग में आ बसी थी। नौ मद्र यह वर्तमान पंजाब का एक छोटा भाग था। इसकी राजधानी शाकल थी। शाकल के वैभव का वर्णन बौद्ध ग्रंथ मिलिंद प्रश्न में मिलता है। इसकी एक शाखा संभवतः हिमालय के उत्तरी भाग में उत्तर मद्र नाम से बस गई है। दस प्राच्य नीचे और सत्वत जनपद ऐतरेय ब्राह्मण में प्राच्य नीचे और सत्वत जनपदों का भी उल्लेख है। इन सब के शासन प्रणाली पृथक पृथक थी। 11 कोसल और विदेह शतपथ ब्राह्मण में कोसल और विदेह जनपद का नाम एक साथ मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि ये दोनों जनपद आसपास थे। सदानीरा नदी को इन दोनों जनपदों की विभाजक रेखा बताया गया है। विदेह बिहार का वर्तमान तिरहुत जनपद है। वहां ब्रह्मवादी राजा जनक हुए थे। 12 काशी अथर्वेद शतपथ जैमिनी ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में काशी का उल्लेख है। यह वर्तमान काशी या वाराणसी है। काशी निवासियों को काशी और काशी के राजा को काश्य कहते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को काशी का राजा बताया गया है। 13 कीकट ऋग्वेद में कीकट जनपद का उल्लेख है। यह विपाश और शुतद्री नदी के पास कोई अनारियों का निवास स्थान था। यहाँ पर गायों की बहुलता थी। 14 चेदी ऋग्वेद में चेदी राज कशु के दान का गुणगान है। चेदी बुंदेलखंड का एक भाग था। 15 विदर्भ जैमिनी ब्राह्मण में विदर्भ नाम आया है। यह वर्तमान बरार जनपद माना जाता है। 16 मत्स्य शतपथ और गोपद ब्राह्मण में मत्स्य देश का नाम आया है। 17 कौशाम्बी और वर्णावती ब्राह्मण ग्रंथों में कौशाम्बी और वर्णावती के किनारे काशी नरेशों की राजधानी का उल्लेख है। 18 कांपिल यह पंचाल राजाओं की राजधानी थी। 19 नैमिष काठक संहिता और छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख है। यह प्रसिद्ध नैमिषारण्य है। 20 पंचजन वेदों में अनेक बार पंचजन का उल्लेख है। पंचजना ममहोत्रम जुषध्वम ऐतरेय ब्राह्मण ने इस विषय को स्पष्ट किया है। इसका अभिप्राय है पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण के राजा एवं प्रजा तथा ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठा अर्थात मध्य देश कुरु पांचाल। इस प्रकार पंचजन में सारी प्रजा का प्रतिनिधित्व हो जाता था। सायर ने पंचजन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद को लिया है। प्रोफेसर रोठ और गेल्डनर ने आर्यों को मध्य में रखकर चारों दिशाओं के चार जनों को लेकर पंचजन बनने का उल्लेख किया है।